ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಿನಾ ಕಾಗತಿಃ ಕೃಷ್ಣೇನ ಪ್ರತಿಹನ್ಯತೆ ಕಲಿಮಲಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕಾರ್ಯಂ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾತ್ರಸ್ಯತಿ ಕಾಲ ಭೀಮಭುಜಗೋ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ವಶೇತ್ ಕೃಷ್ಣೇ ಭಕ್ತಿರಖಂಡಿತಾ ಭವತು ಮೇ ಭೋ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಮೇವಾಶ್ರಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ಲಬ್ ಐಸಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ. ಈ ಸಾರಿ ಭೌತಿಕ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದುನಿಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಪದಕಮಲೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ರಿತ ಹ ಅವ್ರ ಸಬ್ ಜೀವರಾಶಿಯ ಅಪನೆ ಪಾಲನ್ ಕೆ ಲೀ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಪೂರ್ಣ ತರಿಕೆ ಸೇ ನಿರ್ಭರ ಹ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಿನಾ ಕಾ ಗತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಭಟಕನೆ ವಾಲೆ ಜೀವ್ ಔರ್ ಕಿಸ್ ಗತಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹ. ಅಂತ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪದಕಮಲೊಮ್ಮೆ ಹಿ ಆಶ್ರಯ ಲೇನಾ ಪಡೆಗಾ ಹರೇಕ್ ಜೀವ್ ಕೋ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕೋಯಿ ಜೀವ್ ಲಂಡನ್ ಜಾಯೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಜಾಯೆ, ಜರ್ಮನಿ ಜಾಯೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಾಯೆ, ಕಹಿಂಬಿ ಜಾಯೆ, ಅಂತಮೇ ವ್ಯಾಧಿ ಅವ್ರ ಬುಡಾಪ ಅವ್ರ ಮೃತ್ಯು ಹರೇಕ್ ಜೀವ್ ಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹ. ಸಮಯ ಜರೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಆಶ್ರಯ ಲೇಕರ್ ಪರಂಪರ ಕೋ ತಭಿ ಜೀವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಭಟಕನೆ ವಾಲೆ ಜೀವ್ ಕೆ ಲೀ ದೂಸರಾ ಗತಿ ನಹೀ ಹ. ಕೃಷ್ಣೇನ ಪ್ರತಿಹನ್ಯತೆ ಕಲಿಮಲಂ, ವೋ ಬತಾತೆ ಹ ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಮಲ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಚಿತ್ತ ಮೇ ಜೋ ಮಲ್ ಛಾ ಗಯಾ ಹ ಉಸ್ ಮಲ್ ಕೋ ದೂಸರೆ ತರಿಕೆ ಸೇ ಹಮ ಶುದ್ಧ ನಹೀ ಕರ್ ಪಾಯೆಂಗೆ ಜಿತನಾ ಹಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ನಾಮ ಕೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಸೇ ಹಮ ಇನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಮಲ್ ಕೋ ಹಮ ದೂರ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹ. ಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಸರಲ ತರಿಕಾ ಹ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಐಸೆ ಬತಾತೆ ಹ. ಕೃಷ್ಣೇನ ಪ್ರತಿಹನ್ಯತೆ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇನ ಹನ್ಯತೆ, ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರತಿಹನ್ಯತೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹ. ಪೂರ್ಣ ತರಿಕೆ ಸೇ ಹಮಾರೆ ಚಿತ್ತ ಮೇ ಜೋ ಭೀ ಗಂದಗಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ ಶುದ್ಧ ಕರಾ ಸಕ್ತೆ ಹ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕಾರ್ಯಂ ನಮಃ, ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಲೀಲಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೋ ಸಾದರ ವಂದನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂ, ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಲೀಲಾಂ ಕೋ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಚಿಂತನ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಉಸ್ಕ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಔರ್ ಸುನ್ನೆ ಸೇ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಜೊ ಹ ಉಸ್ಕೆ ಹೃದಯ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲೀಲಾ ಚೇಷ್ಟಾಂ ಕಾ ಏಕ್ ರಂಗಮಂಚ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹ, ಜಿಸ್ಸೆ ಭಗವಾನ್ ಜೀವ್ ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚೇತನಾ ಕೋ ಅಪನಿ ಓರ್ ಆಕರ್ಷಿತ ಕರ್ತೆ ಹ. ಇಸ್ಲೇ ಮೇ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಲೀಲಾಂ ಕೋ ಮೇ ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಕೃಷ್ಣಾತ್ರಸ್ಯತಿ ಕಾಲ ಭೀಮ ಭುಜಗೋ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ವಶೇತ್, ಹರೇಕ್ ಜೀವಿಕೆ ಪಾಸ್ ಮೇ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಕಾಲ ಉರಗ ಬೈತಾ ಹ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಕರ್ ರಹಾ ಹ ಹರೇಕ್ ಜೀವ್ ಕೋ. ಹರೇಕ್ ಜೀವ್ ಕಾ ಆಯು ಘಟತಾ ಜಾತಾ ಹ ಔರ್ ಏಕ್ ದಿನ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಜೀವ್ ಕೋ ನಿಗಲ್ ಲೇತಾ ಹ ಔರ್ ಐಸೆ ಕಾಲ ಉರಗ ಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ ಸಬ್ ಜೀವ್ ಭಯಭೀತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹ ಔರ್ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಸೇ ದೂರ್ ಭಾಗತೆ ಹ. ಲೇಕಿನ್ ಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಜುಡ್ ಜಾತೆ ಹ ಐಸೆ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದೇಖ್ ಕರ್ ಕಾಲ ಉರಗ ಪೀಚೆ ಮುಡಕರ್ ದೂಸರಿ ದಿಶಾ ಮೇ ಭಾಗ ಜಾತಾ ಹ. ಕೃಷ್ಣಾತ್ರಸ್ಯತಿ ಕಾಲ ಭೀಮ ಭುಜಗೋ, ಓ ಕಾಲ ಭೀಮ ಭುಜಗ ಜೋ ಡರ್ತಾ ಹ ಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇ. ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ವಶೇತ್, ಈ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾ ಹ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಮೇ ಯಮರಾಜ್ ಖುದ್ ಬೈಠೆ ತೆ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಇಸ್ಲೇ ಯಮರಾಜ್ ಜಿನ್ಕಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಹ ಲೋಕೋ ಕೋ ಯಮಲೋಕ ಮೇ ಲೇಕೆ ಜಾನಾ, ವೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೋ ಭೀ ಭೂಲ್ ಗಯಾ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಥಾ ಸುನ್ತೆ ಸುನ್ತೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ಯಮದಂಡ ನಹೀ ಹ ಐಸೆ ಬತಾತೆ ಹ. ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ವಶೇತ್, ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಸಾರೇ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ದ್ಯೌಸ ಚಂದ್ರಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಂ ದಿಶೋ ಭೂರ್ಮಹೋದಧಿ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ ವಿದೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಸುರಾಸುರ ಗಂಧರ್ವ ಸಯ ಕ್ಷೋರಗ ರಾಕ್ಷಸಂ ವರ್ತ ಜಗತ್ ಪಶೇ ವರ್ತತೆ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ. ಬತಾತೆ ಹ ಕಿ ಈ ಚಂದ್ರಮಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವ್ರ ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಹವಾ ಸಮುದ್ರ ಅವ್ರ ಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷ ಉರಗ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಿಂ ಪುರುಷ ಇಸೆ ತರ ತರಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾಕೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಜೀವರಾಶಿ ಸಬ್ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ವಶ್ಮೆ ಹ. ಜಗತ್ ವಶೆ ವರ್ತತೆ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ, ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ವಶ್ಮೆ ಹ. ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ವಶೇತ್, ಕೃಷ್ಣೇ ಭಕ್ತಿರಖಂಡಿತಾ ಭವತು ಮೇ ಭೋ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಮೇವಾಶ್ರಯಃ. ऐसे परम सत्य परात्पर तत्व जो श्री कृष्ण है उनके भक्ति मुझे प्राप्त हो और अखंडित भक्ति प्राप्त हो। जैसे गीता भागवत के संबंध में तुकाराम जी एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गीता भागवत हरिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, ऐसे बताते हैं। तो ये अखंड चिंतन जो है वो कृष्णे भक्ति अखंडिता भवत में, किसी भी भौतिक कारणवश मेरे भक्ति में बाधा न आए, किसी भी क्षण एक भी क्षण के लिए मेरे जीवन में मैं कृष्ण को ना भूले, ऐसे प्रार्थना है। कृष्णे भक्ति अखंडिता भवतु मे, भो कृष्ण त्वमेव आश्रय, हे कृष्ण मैं आपका आश्रय लेता हूं, क्यों, क्योंकि आप ही मेरे सर्वस्व हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव द्वेव। हे भगवान आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे द्रविण हो धन हो, और आप ही मेरे मित्र हो, मेरे बंधु हो, और आप ही मेरे सर्वस्व हो, और आपके आश्रय के बिना मुझे दूसरा आश्रय नहीं है। इस तरह ये शुद्ध भक्ति का प्रार्थना है। मैं सर्वप्रथम आप सबको स्वागत करना चाहता हूं ये कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, क्योंकि ये शुभ दिन जो है जो कृष्ण जयंती नाम से पुकारा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे, शाइन मीन्स सनशाइन, कॉन्शियसनेस मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, जयंती मीन्स कृष्ण जयंती। तो बोला करते थे कि जयंती मनाया जाता है भगवान के लिए हमेशा। आजकल अनेक जयंती लोग मनाते हैं, अनेक लोगों की जयंती मनाते हैं आजकल, लेकिन असली जयंती मनाया जाता है उस व्यक्ति के लिए जो पुरुषोत्तम है, जो शाश्वत पुरुष है, जो परम भोक्ता है, जो परम सत्य है, परमेश्वर है, उनके लिए जयंती मनाया जाता है। और आज के दिन जो भगवान के कृष्ण के मंदिर में आकर भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा, भगवान की प्रार्थना, भगवान की लीला चेष्टाओं की कथा जो बहुत श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनको बहुत अपार कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता लिखी थी पहले, अमेरिका में प्रचार करना शुरू किया उन्होंने, उसके बाद उनका मुलाकात हुई जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन से। उन दिनों में जॉर्ज हैरिसन बहुत मशहूर थे बीटल्स ग्रुप के लिए। ऐसा बताया जाता है कि वो जो टॉवल से अपने बॉडी को, अपने शरीर को धुलाते थे, उसको लेकर उनके फैंस जो होते थे, उनके अनुयायी होते थे, उसको काटकर इतने इतने एक स्क्वायर इंच बनाकर एक एक स्क्वायर इंच को $1,000 में बेचा उन्होंने। इतना बहुत मशहूर थे उनके समय में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पहली बार मिला तो उनको, उनके मन में एक शंका था। प्रभुपाद ने बोला कि क्या तुम्हारे मन में शंका है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, ऐसे प्रभुपाद ने पूछा। और प्रभुपाद जी हमेशा समझाते थे लोगों को, देखो इस दुनिया में कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, लेकिन ये सब पतियों से भी बढ़कर हैं कृष्ण, क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं, वो सब सारे लक्ष्मी के पति हैं। इस तरह देखा जाए तो कोई 100 पाउंड उठाता है, कोई 150 पाउंड उठाता है, बड़े बड़े मोटे मोटे लोग टेलीविजन में दिखाई देते हैं, इतना बड़ा बहुत बड़ा भार उठाते हुए लगता है कि उनके नसीने टूट जाएंगे ऐसे। लेकिन कृष्ण ऐसे छोटे मोटे वेट को उठाते नहीं, वो गोवर्धन पर्वत को ही उठा देते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा एक थर्माकोल को उठाता है, ऐसे उठाते हैं। भगवान को जरूरत नहीं पड़ता कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, देखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे उठा देते हैं बहुत आसानी से। इसलिए भगवान सबसे बलवान है भगवान। इस तरह भगवान जब मुरली बजाते हैं, वो मुरली का आवाज इतना मधुर होता है, रेणुर मधुरा, रेणुर मधुरा, पाणिर मधुरा, पादौ मधुरा, नृत्यम मधुरम, సఖ్యం మధురం మధురాధిపతే అఖిలం మధురం మధురాధిపతే అఖిలం మధురం మధురాధిపతే అఖిలం మధురం. దేఖియే ఉన్కే వేణు ఇతనా మధుర హోతా హై. మే జబ్ దక్షిణ భారత్ గయా థా ఏక్ మందిర్ మే హమ్ గయే థే ఆదికేశవ్ మందిర్ మే. ఉదర్ బహుత్ బహుత్ వరాండా హై, బడే బడే వరాండా హై. వరాండా మే బహుత్ బడే ఖంబ రఖే గయే హై ఔర్ ఖంబ మే అలగ్ అలగ్ భగవాన్ కే లీలాఓ కా మూర్తియాన్ థే. తో ఏక్ ఖంబ కే సామ్నే మేనే దేఖా ఐసే మురళీధర్ నామ్ కే కృష్ణ కడే థే. ఉదర్ కృష్ణ కా బహుత్ బడా మూర్తి థా. ఓ మూర్తి కే ఇస్ బాజు మే లక్ష్మీ జీ రాధా రాణి జీ కడీ థీ, ఉన్కే హాత్ మే ఏక్ కమల్ థా. ఔర్ దూసరే బాజు మే హమ్నే దేఖా ఉదర్ ఏక్ ఏక్ గాయ్ బహుత్ ఏక్ సమ్ ధ్యాన్ సే కృష్ణ కే మురళీ బాజ్ కో సున్ రహా థా. దో పైర్ మే కడే హోకర్ జైసే మనుష్య లో కడే హోతే హై దో పైర్ మే ఐసే హీ. ఔర్ ఉన్కే పీచే ఏక్ ఏక్ బాఘ్ థా, ఉన్కే కంధే కే ఊపర్ ఐసే హాత్ రఖతే హుయే వో భీ సున్ రహా హై మురళీ. ఔర్ ఉస్కే పీచే ఏక్ హిరణ్ థా జో బాఘ్ కే కంధే కే ఊపర్ పాంవ్ రఖతే హుయే హాత్ రఖతే హుయే ఐసే వో భీ సున్ రహా హై మురళీ. ఔర్ హమ్నే దేఖా కి గాయ కా జో బచ్చరా జో థా వో బాఘ్ సే దూధ్ పే రహీ థీ వో. ఔర్ బాఘ్ కా జో ఛోటా బచ్చా హై వో గాయ కే స్తన్ సే దూధ్ పే రహీ థీ. తో హమ్నే పుజారి కో బులాకర్ దిఖాయా మనే యే క్యా గలతీ హో గయా ఇధర్, ఆప్నే గలతీ క్యా. వో బోలే స్వామి జీ ఆప్కో మాలూమ్ నహీ హై, బహుత్ పురానా బహుత్ బహుత్ పురానా శిల్ప హై. ఔర్ క్యో గాయ కి బచ్చరా బాఘ్ సే దూధ్ పే రహీ హై, క్యోకి భగవాన్ కి మురళీ బాజ్ మే ఇత్నా ఉస్కా మన్ విహ్వల్ హో గయా హై కి వో బూల్ సే బాఘ్ సే పే రహీ హై దూధ్ ఐసే ఐసే వో బోల్ రహే థే ఐసే. తో ఇస్ తరహ్ కృష్ణ కి మురళీ బాజ్ జో హై వో మన్మోహక్ హై. ఔర్ కృష్ణ కి శరీర్ హీ బహుత్ సుందర్ హై, ఔర్ కృష్ణ కే చెహరా ఔర్ భీ సుందర్ హై. ఔర్ కృష్ణ జబ్ ముస్కురాతే హై ఉస్ సుందరతా కి సీమా హీ నహీ హై ఐసే ఠాకూర్ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి బతాతే హై. తో ఇస్ తరహ్ భగవాన్ సబ్సే సుందర్ హై, సబ్సే బలవాన్ హై, సబ్సే ఐషారామ్ ఔర్ లక్ష్మీ సంపన్న హై. తో ప్రభుపాద్ జీ ఇస్ తరహ్ భగవాన్ కే అలగ్ అలగ్ విభూతియో కే బారే మే సమజాతే థే. ఇస్ తరహ్ బోల్ కర్ ప్రభుపాద్ నే పూచా జార్జ్ హారిసన్ కో, క్యా భగవాన్ కృష్ణ కో ఆప్ మాన్తే హై కి నహీ కి వో పరమ సత్య హై పరమ భగవాన్. తో జార్జ్ హారిసన్ నే బోలా, స్వామి జీ ముజే ఇస్కే ఊపర్ శంకా నహీ హై, ముజే పూర్ణ విశ్వాస్ కి కృష్ణ హీ భగవాన్ హై ఐసే ఉన్హోనే బోలా. లేకిన్ ముజే ఏక్ శంకా హై కి ఆప్ కభీ కభీ బోల్తే హో కి ఆప్కే భగవద్గీత యథారూప్ భగవద్గీత జస్యా హై తసి, యహీ ఏకమాత్ర భగవద్గీత హై జిస్కా ఇంటర్ప్రిటేషన్, వాట్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, స్పష్టీకరణ జో హై సబ్సే సహీ హై. ఔర్ కభీ కభీ ఆప్కే లోగ్ దూసరి భగవద్గీతాఓ కే కమెంట్రీ జో హై ఉస్కో నిందా కర్తే హై, నహీ తో బోల్తే హై కి వో ఠీక్ నహీ హై ఐసే బోల్తే హై. తో క్యో ఐసా క్యా హై భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐసే నామ్ క్యో దియా ఆప్నే, భగవద్గీత యథారూప్ ఐసే నామ్ క్యో దియా ఐసే పూచా ఉన్హోనే. తో ప్రభుపాద్ నే బోలా, దేఖో అగర్ కోయి భగవద్గీత పఢతా హో, భగవద్గీత అగర్ ఉస్కా అసలీ కమెంట్రీ హై, తో భగవద్గీత కో పఢనే కే బాద్ ఏక్ వ్యక్తి కే అందర్ కృష్ణ కే లియే ఇతనా ప్రేమ్ జాగృత హోనా చాహియే కి వో కృష్ణ కే లియే అడిక్టెడ్ హో జానా చాహియే. ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ స్టడీయింగ్ భగవద్గీత ప్రాపర్లీ దే షుడ్ బికమ్ అడిక్టెడ్ టు కృష్ణ ఐసే బోలే ప్రభుపాద్ జీ. ఆ ప్రభుపాద్ నే బోలా కి తుమ్ కిసి భీ సంస్థా మే జాకర్ దేఖో కిధర్ ఆప్ దేఖతే హో కి కృష్ణ కే లియే కోయి అడిక్ట్ హో చుకా హై, జో సుబహ్ జల్ది ఉఠతే హై 3 బజే 3:30 బజే ఉఠకర్ భగవాన్ కే సామ్నే ఆకర్ నాచతే హై గాతే హై మంగళ ఆరతి కర్తే హై ఔర్ భగవాన్ కే లియే 2 ఘంటా బైఠకర్ నామ జప్ కర్తే హై. ఔర్ భగవాన్ కృష్ణ కే హీ బారే మే హమేషా చర్చా కర్తే రహతే హై ఔర్ కృష్ణ కే హీ కృష్ణ కో హీ ప్రాప్త కర్నా చాహతే హై, కృష్ణ కా హీ వర్ణన్ కర్నే మే ఆనంద్ లూటతే హై ఐసే ఐసే లోగ్ తుమ్ కిస్ సంస్థా మే దేఖతే హో ఐసే ప్రభుపాద్ నే పూచా. అనేక లోగ్ భగవాన్ కో మాన్తే హై లేకిన్ ఉన్కే పాస్ 99 చీజ్ హై ఉస్కే సాథ్ భగవాన్ భీ ఏక్ ఛోటా చీజ్ హై, క్యోంకి కభీ కభీ భౌతిక్ ప్రాప్తియో కో హాసిల్ కర్నే కే లియే లోగ్ అలగ్ అలగ్ తరీకో కో ఢూండ్తే హై ఇస్ దునియా మే, ఉస్మే సే ఏక్ తరీకా హై భగవాన్ కో భీ పార్ట్నర్ బనా లేనా. कभी कभी लोग बालाजी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अगर हमें 5 लाख मिलेगा तो आपको 1 लाख मिलेगा, ऐसे लोग बोलते हैं, थोड़ा बिजनेस कर लेते हैं इसे है। तो प्रभा ने बोला कि लेकिन प्रभा ने बोला हमारे भक्त जो हैं, जो ये भगवदगीता यथारूप हमारे भागवत को पढ़ते हैं, वो भगवान से मैत्री जोड़ना चाहते हैं और भगवान की प्रेम को जागृत करना चाहते हैं और वो किसी भी रुकावट के बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, बस प्रेम के साथ, दूसरा कुछ इच्छा नहीं है, भगवान का आशीष चाहते हैं बस। ये जब सुना जॉर्ज हैरिसन ने, वो कन्विंस हो गए अपने मन में कि उन्होंने बोला कि आपकी संस्था में मैं देखता हूं सब लोग शुद्ध भक्ति के ऊपर ही जोर दे रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। उसके बाद वो प्रभुपाद जी के बहुत बड़े महान अनुयायी बन गए जॉर्ज हैरिसन। तो ये बात हमने इसलिए बोला आपको कि कभी कभी लोग सीजनल भक्त होते हैं। सीजनल भक्त का मतलब क्या है? ऋतु के अनुसार भक्त बनते हैं। जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं भारत में, लोग अलग अलग मंदिरों में भीड़ बहुत हो जाता है ऐसे। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, हे अर्जुन, इस दुनिया में लोग अलग अलग प्रेम में फंसे हुए हैं। कोई करता है कुत्ता प्रेम, कोई स्त्री प्रेम, पुरुष प्रेम, परिवार प्रेम, देश प्रेम, ये सब छोटे छोटे मोटे धर्म होते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये सब को पार करके तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए, ऐसे भगवान बताते हैं। वो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो आप देखेंगे इस दुनिया में हर एक व्यक्ति या तो किसी को प्रेम करना चाहता है, नहीं तो किसी से प्रेम प्राप्त करना चाहता है। हर एक व्यक्ति, देर आर सो मेनी लव स्टोरीज, देर आर सो मेनी लव नॉवल्स, देर आर सो मेनी लव मूवीज। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू लव समबडी समहाउ समबडी एवरीबडी एट एवरी मोमेंट। हम देख सकते हैं कि हर क्षण एक युवक का आंखें इधर उधर घूमता है युवतियों की ओर, युवतियों की आंखें युवक की ओर घूमता है। हम देख सकते हैं कि हर क्षण इस तरह का हमारे अंदर एक वेग है किसी सुंदर वस्तु को देखने के लिए और प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि मैं किसी भी चीज से प्रेम नहीं करता, मैं अना सकता हूं, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन लोग ये नहीं जानते ये प्रेम को किस विषय के ऊपर हमें लगाना चाहिए, ये नहीं जानते। देखिए प्रेम का स्वभाव है संकुचित नहीं रहना लेकिन बढ़ता रहना। जैसे एक आग का चिंगारी होता है, एक बहुत बड़ा अगर बड़ी घास, हरा घास नहीं है पीला घास, समझना आपने, क्या बोलते हैं उसको, भूसा, सूखा हुआ सूखा घास, अगर बड़ा सूखा घास रखा है एक चिंगारी को डाला उसके ऊपर उसे पूरा चलेगा, है ना। इस तरह हमारा प्रेम भी, हम जन्म जब लिया एक ही व्यक्ति से हम प्रेम करते थे, कौन मालूम नहीं आपको, कौन, हमारे माता, माता से। उसके बाद माता हाथ दिखाती है ये तुम्हारे पिता है, ठीक है उनसे भी प्रेम कर लेते हैं। उसके बाद भाई आ जाते हैं, बहन आ जाते हैं, 3-4 लोगों से हम प्रेम करते हैं, है ना। उसके बाद हमारे संबंधी आते हैं, अगर कोई शादी करता है तो देखिए शादी के पहले वो स्त्री को जानता भी नहीं था कौन, लेकिन शादी के बाद इतने आसक्त हो जाते हैं वो उनको भूल नहीं पाते हैं, ऐसे वो प्रेम होता है। उसके बाद उनके 3-4 बच्चे होते हैं उनके साथ प्रेम होता है और नाता रिश्ता होता है, इस तरह हमारा प्रेम बढ़ता है। उसके बाद देश तक बढ़ता है। उसके बाद जैसे कुछ लोग बोलते हैं जय महाराष्ट्र बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जय केरला बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जय कर्नाटक बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरा भारत महान बोलते हैं, है ना। इस तरह प्रेम बढ़ता जाता है हमारा प्रेम, और इस तरह प्रेम जब बढ़ता है सारे दुनिया के, आजकल तो देखे जैसे हम अमेरिका गए थे शिकागो के आगे ब्लूमिंगटन है, ब्लूमिंगटन के आगे कॉर्नवालिस, तो उधर हमने देखा कि भारतवासी लोग ही ज्यादा है उधर, बाकी लोग कम है। इतने दूर प्रदेश में जाकर लोग काम करते हैं, धंधा करते हैं ऐसे अमेरिका में ऐसे। तो उधर हमने देखा कि अनेक लोग आकर, एक व्यक्ति बोला मुझे अमेरिका आने के बाद हमारा मन थोड़ा विशाल बन गया, अभी हम सब लोगों से प्रेम करते हैं, भारतवासी ही नहीं, अमेरिकी हो, चीनी हो, जापानीज हो, कोई भी हो, सब मनुष्य से हम प्रेम करते हैं। लेकिन लोग कभी कभी मनुष्य से प्रेम करते हैं लेकिन गाय को काटते हैं, बकरी को काटते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रेम है सब जीव राशियों से प्रेम करना। इस तरह हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, एक सर आता है जब हम हमारे प्रेम और भी सीमा से भी बाहर जाना चाहता है, उस समय एक व्यक्ति भगवान का आश्रय प्राप्त होता है उसको बहुत जन्मों के बाद। तो उस समय जब भगवान को कोई प्रेम करता है वो हर जीव को प्रेम कर पाएगा, वो इसको कंप्लीट लव बोला जाता है, पूर्ण प्रेम है वो। अगर कोई समाज की प्रेम करता है, समाज सेवा करता है, लेकिन वो बकरा खाता है मुर्गी खाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण के प्रेम करता है वो एक चींटी को भी दुख नहीं पहुंचाएगा वो, क्योंकि कृष्ण को प्रेम करने वाले हर एक जीव को प्रेम करेंगे। लव फॉर गॉड एंड लव फॉर ऑल, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए वो हर एक जीव को देख पाएगा कि एक बकरा है उसके शरीर में एक आत्मा है, जैसे मुर्गी है उसके शरीर में एक आत्मा है, एक चींटी के ऊपर भी पांव नहीं रखेगा, समझेगा कि उसके अंदर भी मेरे जैसे ही एक आत्मा बैठा है। इसे ये सब हमारे एक 84 लाख हमारे भाई बहन है, अलग अलग कपड़े पहने हुए, ऐसे वो देखेगा, और सब भगवान के ही बच्चे हैं। तो इस तरह का प्रेम जो है जागृत करना भगवान के लिए, और भगवान के सब जीवराशियां जो है उनके अंश जो होते हैं उनके लिए, यही जीवन का लक्ष्य है। और ऐसे अगर हम प्रेम जागृत करेंगे, हम दूसरे जीवों की ओर हमारे मन में जो द्वेष भावना है, ईर्ष्या भावना है, वो सब मिट जाएगा। हम हर एक जीव को हम प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी बैठा है। इसलिए हम सब जीवों को हम प्रेम करेंगे। तो किसी भी धर्म हो, क्रिश्चन धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म का यही बुनियाद है कि भगवान से और हर एक जीव से प्रेम करना और किसी से द्वेष नहीं करना और इस भगवत प्रेम को जागृत करना। तो प्रभुपाद जी ये भगवत प्रेम के बारे में अपने किताबों में उन्होंने सिखाया है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इस दुनिया में सब लोग शोषण करते हैं एक दूसरे को। आप कंपनी में काम कीजिए, आजकल लोग धंधा करते हैं 16 घंटा कभी कभी, और तनख्वाह उतना ही मिलता है, लेकिन कंपनी लोग बोलते हैं क्या तुम इतना घंटे काम नहीं करोगे तो हम तुमको निकालकर दूसरे और व्यक्ति को लगाएंगे तुम्हारे स्थान में। इसलिए लोग अगर उनके बॉस चले जाते हैं एक हफ्ते के लिए, लोग मनाते हैं अच्छा हो गया अभी बॉस नहीं है अभी तो। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं कि इस दुनिया में सब लोग शोषण कर रहे हैं, मेरे माता पिता से मुझे प्रेम मिलता है, भाई बहन से प्रेम मिलता है, बीवी बच्चों से प्रेम मिलता है, इस तरह लोग बोलते हैं। प्रेम मिलता तो है, कभी कभी वो लोग निस्वार्थ होकर भी सेवा भी करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कितने साल के लिए हम इस तरह के प्रेम को हम प्राप्त कर पाएंगे? ऐसे 60 साल, 80 साल, 100 साल, 100 साल से ज्यादा कौन जीता है? अगर आप 100 साल से ज्यादा जियोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, भारत सरकार देगा कुछ पुरस्कार दिल्ली में, तो ऐसे जीने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि हमारे माता पिता जो होते हैं उनसे हमें जो प्रेम प्राप्त होता है वो हमारे शाश्वत माता पिता जो हैं, जो श्री लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, वो शाश्वत प्रेम है और ये क्षणभंगुर प्रेम है, इस तरह शास्त्र बताते हैं। इसलिए हम शुरुआत में एक गीत गा रहे थे, भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भगवान के आश्रय लेने से हम भय, हमारे अंदर जो भय है वो दूर हो जाता है। कुछ कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी मुझे भय नहीं है, किसने बोला कि मुझे भय है? अगर हम मानते नहीं तो हम बोल सकते हैं पुणे में जब स्वाइन फ्लू आया था सब लोग ऐसे ये पहने थे, मास्क पहने थे, इतने भय हो गया लोगों को, 10 लाख लोग मास्क पहने थे पुणे में। ये मास्क बेचने वालों का बिजनेस बढ़ गया बहुत जल्दी कुछ ही क्षणों में। तो हमें भय है कि स्वाइन फ्लू अंदर ना चले जाए, हम मर न जाए। हर एक इंसान डरता है इस दुनिया में, स्वाइन फ्लू को आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उससे भी हम डरते हैं। और देखने वाले जिसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं। तो भगवान के आश्रय लेने से हम बायस से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरे तरीके का भय है जो हमें चाहिए, क्या है? अगर सड़क में इलेक्ट्रिक वायर पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा है जमीन में, आपके पास दो चॉइस है, आपके पास चप्पल नहीं है, आप पांव उसके ऊपर रख सकते हो नहीं तो उसको क्रॉस करके जा सकते हो, आप क्या करेंगे? कितने लोग आप उसके ऊपर पांव रखेंगे? कोई रखेगा? कोई? कितने लोग क्रॉस करके चले जाएंगे आप? समझ रहे आपने? तो हमें डर होना चाहिए, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक वायर है, कभी भी दुग 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 से इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा, हमारे जान को भय होना चाहिए, आग से भय होना चाहिए, है ना। इस तरह कुछ चीज है जिनसे हमें भय होना चाहिए। इस तरह विषय और विष, ये दोनों में विषय वासनाओं से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि विष जो है एक शरीर को मारता है, लेकिन विषय वासनाएं जो है वो हमें बार बार पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं विषय। इसलिए काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि ये षड रिपु जो हैं, ये हमेशा जीव को सताते हैं। देखिए आज के दिवस में कंस के जेलखाने में देवकी और वसुदेव इनके छह पुत्र बने, पहले छह पुत्र हुए जिनको एक एक करके कंस ने मारा। अभी देवकी कौन है? देवकी भक्ति शक्ति है, भक्ति शक्ति है और भक्ति के एक अवतार है देवकी। और कंस जो है वो उसके हृदय में हमेशा भय रहता है कृष्ण के लिए, उसको इतना भय था। एक दिन उसके दो बीबियां आ रहे थे सामने, तुरंत कंस देकर बोला कि हे कृष्ण बलराम आ रहे हैं, बोला ऐसे। तो वो तो बोल गए हम तो आपके बीबियां हैं, कृष्ण बलराम किधर आए? तो कहीं भी देखता था उसको कृष्ण का याद आता था, उसको डरता था वो कृष्ण से। ऐसे आईने में देखता था वो, उसको दिखाई देता था उसका शरीर कड़ा है मुर्दा जैसा, लेकिन गर्दन के ऊपर नहीं है कुछ नहीं, गर्दन नहीं है, ऐसे दिखाई देता उसको। कभी कभी उसको स्वप्न होता था कि कोई उसको एक गधे के ऊपर सवार करके पूरे गांव में भेज रहे हैं उसको। इस तरह के दुस्वप्न आते थे कंस को। कंस बहुत डरता था कृष्ण से, कृष्ण नाम सुनते ही, कृष्ण सुनते ही डरता था वो ऐसे। तो कंस डर की मूर्तिमान स्वरूप है और देव की भक्ति की भक्ति शक्ति के स्वरूप है। अभी देवकी के गर्भ में छह बच्चे हुए, एक एक करके मारे गए, आपको मालूम है कंस ने मारा था एक एक करके। तो ये छह बच्चे को संबोधित करते हुए शास्त्र बताते हैं शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय जो हैं जिनके द्वारा बद्ध जीव इस दुनिया के चीजों को भोगता है और बंधा जाता है इस दुनिया में, ये पांच। और छठा जो है मन, जिससे हम कल्पना करते हैं इंद्रिय भोग की। ये छह चीजों को छह बच्चों से संबोधित किया गया है और इस तरह ये छह चीज मर मिटने के बाद सातवां पुत्र कौन है? बलराम जी हैं। बलराम जी कौन है? अनंत शेष है, उनको आदि गुरु बोला गया है। आप देखेंगे जब किसी भी मंदिर की स्थापना होता है नीचे वो अनंत शेष को पहले डालते हैं, उसके बाद मंदिर की सृष्टि होता है, मंदिर को बनाते हैं उसके ऊपर। तो भगवान कृष्ण अनंत शेष के ऊपर ही बैठते हैं मंदिर में, जैसे हम अभी राधा वृंदावन चंद्र को स्थापन करेंगे अगले साल, आप देखेंगे तो अनंत शेष को भूमि पूजा के समय नीचे डालते हैं। इस तरह सातवां बच्चा अनंत शेष है जो बलराम जी, वो आते हैं और उनका ट्रांसफर होने के बाद आठवां पुत्र कृष्ण आते हैं। इसका मतलब क्या है? हर एक जीव के हृदय में ये षड रिपु है, काम क्रोध मतलब महामत्सर इत्यादि और शब्द स्पर्श रसोप गंधा और मन इत्यादि के साथ जो हम इस दुनिया में इंद्रिय तर्पण करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं और इस दुनिया में बार बार हम दुखों को भोगते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में एक सदगुरु प्राप्त होते हैं वैष्णव गुरु जो हमें कृष्ण से परिचय कराते हैं, जैसे बलराम जी कृष्ण से परिचय कराते हैं हमें, इस तरह नित्यानंद प्रभु हमें गौरंग महाप्रभु से परिचय कराते हैं इस तरह। तो वो जब आ जाते हैं तभी हम सब वासनाओं से ऊपर उठकर हम भक्ति शक्ति जो कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही कृष्ण जन्म का एक दिव्य भाषण हमारे आचार्य ने दिया है ऐसे। तो हम बता रहे थे कि इस दुनिया के प्रेम अशाश्वत प्रेम है, कुछ समय के लिए टिकने वाला चीज है, लेकिन कृष्ण के लिए जो हम प्रेम जागृत करेंगे वो प्रेम हमेशा के लिए है जीव जीव के हृदय में। जैसे कभी कभी एक कोयला जो होता है उस वो एक कोयला के ऊपर भस्म आ जाता है, आप देख नहीं पाते उसको। कभी कभी गांव में जब भस्म होता है ऐसा करते हैं वो चला जाता है और कोयला को आप देख सकते हैं एकदम गरम गरम। इस तरह हमारे अंदर भी कृष्ण के लिए प्रेम है, लेकिन उस प्रेम अभी डूब गया है, हम उसको भूल गए हैं, तरह तरह के वासनाओं के कारण वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो। लेकिन इसको हम जागृत कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका से जब भारत वापस लौटे, उधर आए थे बंबई में, चौपाटी बीच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रभुपाद जी देखे कि 6-8 मायावादी लोग बैठे थे, सन्यासी लोग बैठे थे। प्रभुपाद जी को भी बुलाया गया कि इधर आ रहे हैं स्वामी जी, जो अमेरिका जाकर प्रचार करके अमेरिकी लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाया। तो उनको स्टेज में बुलाया, उनका भी बिठाया, सब लोग ताली बजाया। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि ये निराकारवादी सन्यासी लोग, लंबे लंबे प्रवचन दिया उन्होंने, सब लोग सो रहे थे ऑडियंस में। तो प्रभुपाद जी जब आकर बैठे, प्रभुपाद जी का टर्न आया लास्ट में। तो प्रभुपाद ने देखा कि अभी क्या मैं प्रवचन दूं कि नहीं, देख रहे थे प्रभुपाद जी। अभी सब लोगों को जगाने के लिए प्रभुपाद ने क्या किया, अभी अमेरिकी शिष्यों को बुलाया, कुछ शिष्य आए, शिष्य आए, और एक छोटी बच्ची भी आ गई, सरस्वती नाम का, इतना छोटी। प्रभुपाद बोले कि कीर्तन शुरू करो। अब सब लोग कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा। जब कीर्तन हुआ, स्टेज में सब नाच रहे थे और ऑडियंस लोग भी सब खड़े होकर नाचने लगे। प्रभुपाद ने देखा कि भारतवासी लोग जो नाच रहे थे उनके आंखों से आंसू भर रहे थे, क्योंकि भारत के लोगों के अंदर कृष्ण के ऊपर राम के ऊपर स्वाभाविक प्रेम है, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है। जैसे टेलीविजन में रामानंद सागर के जो रामायण आता था, जब वो बंद हो गया, पूरा हो गया, सारे भारत के लोग रोने लगे कि वापिस दिखाएंगे तो कितना अच्छा होता ऐसे। तो प्रभु ने देखा कि इतना ही नहीं, पुलिस लोग जो पीछे खड़े थे लाठी के साथ, वो भी लाठी को घुमाते हुए नाच रहे थे वो भी, और न्यूज़पेपर के लोग आए थे कैमरा लेकर, वो लोग कैमरा लेकर नाच रहे थे वो भी। इस तरह सब लोग कितने भी नाच रहे थे खुशी से, और सब लोगों को बिठाने के लिए और 5 मिनट लग गया। उनको बिठाने के बाद प्रभु जी ने माइक में बोला, मेरे पहले स्वामी निखिलात्मानंदा जो रामकृष्ण मिशन से आए थे, उनका नाम लिया उन्होंने, स्वामी निखिलात्मानंदा ने बोला कि भारतवासियों के अंदर हमें चरित्र लाना चाहिए। जब तक लोगों के अंदर चरित्र नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, लोग शांति से सुख से खुशी से नहीं जी सकते हैं, उन्होंने ऐसे बोला था। तो प्रभुपाद ने बोला कि ऐसे चरित्र हम लोगों के अंदर कैसे ला सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद ने पूछा। उन्होंने बोला कि मैं गया था अमेरिका ये हरिनाम संकीर्तन को लेकर, और इस हरिनाम को मैंने बांटा मेरे गुरु के आदेश के अनुसार, और ये अमेरिकी लोग जो लोग गोमांस खाते थे आजकल ये लोग चाय भी नहीं पीते, और ये लोग जो परस्त्री गमन करते थे, नशा लेते थे, तरह तरह के व्यसन से पीड़ित थे, आजकल ये चाय भी पीते नहीं, काफी भी पीते नहीं है। और ये लोग जो बवरे में रहते थे, अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, माता पिता को ना मानकर, सरकार को ना मानकर, पुलिस को भी ना मानकर, किसी को भी ना मानकर ऐसे जीवन जी रहे थे, अभी बहुत बड़े बड़े सन्यासी बनकर, बड़े बड़े महान कृष्ण के भक्त बनकर ये सारे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे चमत्कार कैसे हुआ? प्रभुपाद ने पूछा। ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये हरिनाम का चमत्कार है, ऐसे बोले। क्योंकि हरि ये शब्द का दो मतलब है, एक मतलब है सर्व अमंगल हरे इति हरि, सब अमंगल को चूस लेते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए उनका नाम हरि है। जैसे सूर्य है, अगर कोई मलमूत्र करता है तो उसको चूस लेता है सूर्य, खुद भी दूषित नहीं होता, उस स्थान को भी साफ कर देता है, ये सूर्य का गुण है। भगवान हरि भी ऐसे हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके पाप कर्म को भगवान चूस लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे बोलते हैं। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, बहुत जन्मों में हमने इकट्ठा किया हुआ पाप को भगवान चूस लेते हैं, ये एक मतलब है। दूसरा मतलब है हरि का, प्रेम दिया हरे मन, अपने ही प्रेम देकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, भक्तों के हृदय को चोरी कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है, ऐसे पढ़ा। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि मैं अमेरिका जाकर ये हरिनाम को बांटा मैंने, इसका नतीजा क्या निकला आप देख सकते हैं कि ये लोग सब तरह के पाप कर्मों से व्यसनों से मुक्त हो गए, अब साथ साथ कृष्ण की ओर आकर्षित हो गए, अभी ये कृष्ण के आकर्षण को सारे दुनिया के लोगों को फैला रहे हैं, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। ये कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है आकर्षित करना, न का मतलब है आनंद प्रदान करना, अपनी ओर आकर्षित करके कृष्ण दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण है। देखिए आप देखेंगे नरसिंहदेव है, उनके माता पिता कौन है, किसी को मालूम है? कोई जानते हैं नरसिंहदेव के माता पिता कौन है? वो किधर से निकले नरसिंहदेव? कंब से निकले, है कि नहीं? इस तरह आप देखेंगे वराह देव निकलते हैं, ये ब्रह्मा जी के नाक से निकलते हैं। देखिए आपने कभी कभी नाक से कुछ निकालते हैं वो तो गंदा होता है, उसको हम कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, लेकिन ब्रह्मा के नाक से जो निकला, एक बार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, ये दो बड़े बड़े राक्षस आए हैं जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इनको कौन मारेगा? उस समय जुर्फ करके ऐसे उनके नाक से कुछ निकला और एक छोटा जंतु था वो, और उसके बाद इतना बड़ा हो गया, उसके बाद इतना बड़ा हो गया, उसके बाद इतना बड़ा हो गया, उसके बाद ऐसे मेरु पर्वत जैसे बड़ा हो गया, और देव देवता देख रहे थे, ब्रह्मा देख रहे थे, जान नहीं पाए कि कौन है, ये तो सुअर के जैसे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये भी एक कुछ राक्षस है क्या, ऐसे सोच रहे थे वो। उस समय भगवान समझ गए कि ये लोग जान नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूं, उनके शरीर में बाल थे, अपने बाल से पानी ऐसे फेंका, वो सब ऋषि मुनियों के ऊपर, देवताओं के ऊपर वो पानी गिर गया, और वो सुगंध, इतना सुगंध आ रहा था जैसे रोज सेंटेड वाटर होता है ना, रोज का पानी, ऐसे सुगंध आया उनको। तुरंत वो लोग जाग गए, समझ गए कि ये भगवान कृष्ण ही है, लेकिन ये एक वराह के रूप में आए हैं, लेकिन ये दिव्य वराह है जिसका शरीर भी चिन्मय शरीर है। सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, सहस्र शेर सा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्व तो वृत्वान अत्यतिष्ट, ऐसे बोलने लगे पुरुषोत्तम प्रार्थनाएं। तो भगवान तरह तरह के अवतार में आते हैं, जैसे नरसिंहदेव के रूप में, वराह देव के रूप में, वामन देव के रूप में आते हैं, और हर अवतार में इनका शरीर दिव्य होता है, दिव्य पदार्थ से बनाया हुआ है सच्चिदानंद से। लेकिन आप देखेंगे ये सब अलग अलग अवतारों के स्रोत्र हैं, कृष्ण है। इसके संबंध में पहले स्कंद में कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ऐसे वेदव्यास जी घोषणा करते हैं। भारत के लोग जानते हैं 10 अवतारों के बारे में, लेकिन आप भागवत पढ़ेंगे आपको पता चलेगा 24 अवतार है, उसमें 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अवतार है। लेकिन ये आप देखेंगे कि इन अवतारों में भगवान बहुत बड़ा रूप धारण करते हैं, जैसे वामन देव छोटे रूप में आते हैं, लेकिन बलि महाराज को जीतने के लिए उन्होंने इतना महान रूप धारण किया जिसको हम त्रिविक्रम बोलते हैं। ऐसे इस तरह जब नरसिंहदेव भी आए थे उनका रूप भी बहुत बड़ा था, ऐसे बताया जाता है कि बादल चारों दिशाओं में बिखर गए उनके है उनके बाल से हा? ऐसे और उनकी आंखें जैसे सूर्य और चंद्र के बराबर चमक रहे थे, उनका बहुत बड़ा रूप था नरसिंहदेव का भी। लेकिन कृष्ण जब आते हैं एक नन्हे मुन्ने बालक के रूप में आते हैं, कारण क्या है मालूम आपको? क्योंकि इस दुनिया में हम सब लोग दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति बोलना चाहता है कि हमारे घर को कंट्रोल करने वाले हम ही हैं। जैसे पुरुष अपने मित्रों को बोलता है आप इसमें दफ्तर करने में बोलता है कि देखो मेरी बीवी मेरी बात मानती है, बच्चे भी बात मानते हैं, घर को संभालने वाला मैं ही हूं, मैं घर का राजा हूं। और उसकी बीवी बोलती है अपने सहेलियों को बोलती है कि घर का रानी मैं ही हूं, और मैं जो बोलते हैं बोलती हूं वो सब मानते हैं। और बच्चा बोलता है कि अगर मैं चिल्लाऊंगा हाथ पैर हिलाकर माँ बाप दोनों दौड़ते हैं इधर उधर, मैं दोनों को दौड़ाता हूं इसलिए मैं ही घर को संभालता हूं। हर एक व्यक्ति कंट्रोल करने में बहुत मजा मिलता है लोगों को। जैसे कुछ लोग नाव को चाकर है हाय आओ इधर ऐसे बोलते हैं, अगर 10 लोग आते हैं तो बोलते हैं देखो मेरे बात सुनते हैं हमें मानने वाले इतने लोग हैं, तो कंट्रोल चाहते हैं लोग ऐसे दूसरों के ऊपर कंट्रोल रखना। लेकिन एक विषय में हम लोग पूर्ण रूप से हम नियंत्रित हो जाते हैं, वो किस अवस्था है? जब हम किसी को प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम से हम बंधे जाते हैं, प्रेम के पास में अगर कोई हमें बांधते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह भगवान ने भी इच्छा कि मैं विष्णु के रूप में हूं, शंख चक्र गदा पद्म वगैरह पकड़ा हुआ हूं, पद्म और शंख जो है मेरे भक्तों के लिए है और गदा और चक्र असुरों के लिए है, मैं असुरों को संहार करता हूं, भक्तों का पोषण करता हूं, ठीक है भक्त लोग खुश हैं, फिर भी भक्त लोग आकर मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे कृतांजलि होकर प्रार्थनाएं करते हैं, सब ठीक है, लेकिन हमारे प्रेम उतना विकसित प्रेम नहीं है। ये प्रेम जो है मेरे भक्त जो प्रेम करते हैं उसमें थोड़ा डर भी है, साथ साथ प्रेम भी है थोड़ा डर भी है भगवान के लिए, इस तरह का प्रेम है। तो भगवान ने इच्छा की क्या ऐसे प्रेम का मैं अनुभव करूं जिसमें मैं मेरे भक्तों का आधीन हो जाऊं, ऐसे उन्होंने इच्छा की, क्योंकि भक्तों का आधीन होने में एक आनंद मिलता है ऐसे, तो बहुत निकट प्रेम होता है घनिष्ठ प्रेम। जैसे हमें याद है कि हम जब छोटे बच्चे थे हम बहुत भाग कर आते थे घर में, कभी आकर नीचे गिर जाते थे, धड़ाल करके गिर जाते थे, तो मैं उठकर देखता था इधर उधर, अगर कोई नहीं है तो हम रोते नहीं थे, क्योंकि रोने में क्या मजा, कोई देखने के लिए कोई नहीं है ना। लेकिन अगर माँ बाप होते थे पास में, धीरे से हम शुरू करते इसे बहुत बड़ा आवाज, इतना चिल्लाते थे आधा घंटा उनको हमें शांतावना करने में चला जाता था। इसलिए पिताजी क्या करते थे, जब हमारा रोना शुरू होता था तुरंत आकर वो जमीन को पिटाई करते थे, वो बोलते थे कि जमीन है तुमको मारा ना, ऐसा करते थे वो, तो हमको बहुत आनंद आता था कि जमीन को अच्छा मारा इन्होंने, तो जमीन को मारने से क्या उसको दर्द होने वाला क्या? लेकिन क्यों करते हैं ऐसे पिताजी, ये बच्चे की खुशी के लिए करते हैं, है कि नहीं? अब वो मूर्ख नहीं है, वो बुद्धिमान है, फिर भी वो बच्चे को आनंद देना चाहते हैं इसलिए करते हैं। इस तरह भगवत धाम ऐसे एक दुनिया है जिधर भगवान अपने भक्तों की खुशी के लिए काम करते हैं और भक्त भगवान की खुशी के लिए काम करते हैं, बस दूसरा कुछ काम नहीं है उधर। आपको ऑफिस जाना नहीं है, आपको पैसा कमा कर लाना नहीं है, कुछ बड़े कर्तव्य कुछ नहीं है उधर। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभावकि ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। कुछ कार्य नहीं है उधर भगवत धाम में करने के लिए, एक ही कार्य है, क्या है? सिर्फ आनंद लुटना, बस प्रेम के आदान प्रदान में। एक में एक छोटा आपको एक लीला बताता हूं, आपको पता चलेगा किस तरह के आदान प्रदान चलता है भगवत धाम में। एक दिन की बात है, यशोदा दुलाल नंदा दुलाल कृष्ण अपने बिस्तर पर लेटे थे, कृष्ण को सुलाना भी एक तरह का लीला है, वो भी एक तरह का सुंदर लीला है। जब हम जाना माता जी के घर में जाते थे कार्यक्रम के लिए, राधा गोपीनाथ वो आते थे उन दिनों में, एक सुंदर गीत गाते थे, ये ब्रज गीत है वो, सो जा तेरी मैया सुलाती है चंदन की बन पलना, रेशम की बनी डोरी, ऐसा एक गीत है। तो ऐसे एक अच्छे क्या बोलते हैं क्रैडल को, क्रैडल पलना, पलना पलना में सुलाते हैं कृष्ण को। आस पास में सहेलियां बैठी हैं यशोदा के, सब देख रहे हैं कृष्ण कैसे सो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की सोना जो है वो भी बहुत मधुर है देखने के लिए। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है भगवान के संबंध में। इसलिए सोरे सोने वाले भगवान को देखने के लिए आते हैं रंगनाथ मंदिर में अनेक लोग, जब भगवान लेटे हैं ऐसे उनका सोना भी बहुत मधुर है देखने में। तो कृष्ण जब लेटे हैं अपने बिस्तर में अपने पलना में, तभी गोपियां देख रही हैं यशोदा उनको सुला रही है, लेकिन कृष्ण तो सो नहीं रहे हैं। कृष्ण को सुलाना भी कठिन है, उनको खिलाना भी कठिन है बहुत। तो यशोदा सोच रही है क्या किया जाए, तो बोलते हैं कि हे कृष्ण मैं एक आना में तुम्हें एक कहानी बताऊंगी, सुनते सुनते तुम सो जाना ठीक है। ठीक है वो सुनाती है, बोलती है कि एक बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु, उसके बेटे का नाम था प्रहलाद। इस तरह बोलकर उसने शुरू की। तो जब नरसिंह देव की बात आई, बोला कि जब खम्ब को हिरण्यकशिपु ने थोड़ा, अंदर से निकले नरसिंह देव, जिनका चेहरा शेर का चेहरा था लेकिन शरीर था मनुष्य का। तो यशोदा ने सोचा कि इसको बहुत आश्चर्य होगा, तो कृष्ण को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, तो वो तो मुस्कुरा रहे थे, बोले कि ये सब मुझे मालूम है पहले से, क्योंकि वो खुद ही नरसिंह देव के रूप में आते हैं। ये कहानी मुझे पहले से मालूम है, मैं यहां दूसरा बोलो, ऐसे बोला उन्होंने। ठीक है, अभी दूसरी कथा शुरू की यशोदा ने, उन्होंने बोला आप सब लोग मेरे पीछे दौड़ आइए। रामो नाम बभुवा तत् अबलासीतेति इसका मतलब क्या है, हे काना रामो नाम बबु, राम नाम का एक राजा था। तो कृष्ण एकदम ध्यान से सुने, बोले आगे बोलो है? तो बोले कि तत् अबलासीतेति, सीता नाम का उनकी पत्नी था, धर्म पत्नी थी। आगे बोलो, ऐसे बोला उन्होंने। तम पितुर्वाच पंचवटी वने विहरतः, ठीक है लंबा हो गया ना, मैं ही बताता हूं। देखिये, तम पितुर्वाच का अपने पिताजी के वचन मानकर वो जंगल में गए और पंचवटी में वास करने लगे, और एक दिन विहार के लिए गए ये हिरण के पीछे, पंचवटी वने विहरतः। उसके बाद आगे बोली यशोदा, तस्हरत रावण, उस समय रावण नाम का एक राक्षस आया, दशानन रावण आकर सीता मैया को उठाकर लेके गया। ऐसे बोला, जब कृष्ण ने यह सुना तुरंत अपने बिस्तर के ऊपर खड़े हो गए और बोला उन्होंने, सौमित्रे क्वा धनुर 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 इति व्याघ्र किम पंतुनः। ऐसे बताते हैं कि हे सौमित्रे, कौन है सौमित्रा, लक्ष्मण सुमित्रा का बेटा। हे सुमित्रा का बेटे लक्ष्मण, मेरे धनुष को लेके आओ, धनुष के लेके आओ, धनुष के लेके आओ, तीन बार बोला उन्होंने, क्योंकि रावण को मारूंगा अभी। इस तरह बोलते हुए कृष्ण खड़े हो गए अपने बिस्तर में। अभी सब यशोदा मैया की सहेलियों ने पूछा उनको, यशोदा क्या तुम अपने लाला को तुम सुला रही हो, नहीं तो उठा रही हो? नहीं तो उठ गया अभी, ऐसे बोला उन्होंने। तो यशोदा ने बोला, ठीक है देखो आप सब लोग बैठी हो साथ में, इसलिए वो सोता नहीं, आप चले जाओ मैं इसको सुला दूंगी। तो उसके बाद यशोदा मैया सबको भेज दिया और नंदा भवन में वापिस लौट कर वो बिस्तर में ऐसे सो गई लगा कि मानो जोर से नींद आ गया उनको। तो कृष्ण ने अपने मैया को बुलाया, मैया मैया यशोदा मैया, दो तीन बार उन्होंने हिलाया उनको, लेकिन यशोदा मैया उठ नहीं रही थी। तो कृष्ण भी पास में ऐसे लेट गए, वो भी सो गए ऐसे। अभी कृष्ण सोने के बाद एक आंख खोलकर यशोदा ने देखा कि कृष्ण सो गए, तो उठकर किचन में चले गए अपनी सेवाओं को करने के लिए। आजकल भी भारत के अनेक माताएं ये आइडिया को यशोदा मैया से लिया उन्होंने, अपने बच्चों, अगर बच्चे बहुत तंग करते हैं सोते नहीं तो वो सो जाती है पहले, उसके बाद जब बच्चा सोता है तब उठती है वो। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बहुत सुंदर लीला करते हैं। जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर दादि गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर दादि गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर दादि गोपाल Gopal, 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 Gopal.
Gopal, 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 Gopal.
Govinda Govinda Gopal Krishna Govinda Govinda Gopal Govinda Govinda Gopal
Krishna Govinda Govinda Gopal
Krishna Govinda Govinda Gopal Jai Jai Nanda Yashoda Dulal Girivar Dhari Gopal Jai Jai Girivar Dhari Gopal 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 Govinda Govinda Gopal Krishna Govinda Govinda Gopal Govinda Govinda Gopal Krishna Govinda Govinda Gopal Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nanda Yashoda Dula Girivara Dhari Gopal.
भगवान चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल के पहले अवतरित हुए वो बताया करते थे यशोदा नंदन श्याम सुंदर यह मात्र जानी। उन्होंने बोला कि मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं जानता, कुछ बड़े बड़े तत्व को मैं नहीं जानता, बड़े बड़े दर्शन को नहीं जानता, लेकिन दो ही चीज में जानता हूं, श्याम सुंदर और यशोदा नंदन। इनकी प्रेम जो है वो बहुत बड़े बाढ़ के बराबर है। अगर ये प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जिसको हम भाव बोलते हैं, ये भाव प्रेम का भाव जागृत हो जाए और इससे ऊपर हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है इससे बढ़कर। क्योंकि जिन जीवों के हृदय में ये रति कृष्ण के लिए जागृत हो जाता है, भगवान बताते हैं वो लोग अंतिम काल में भगवान का स्मरण बहुत आसानी से कर पाते हैं और अपने शरीर को त्याग कर वो सीधा परलोक पद प्राप्त होता है उनको गोलक वृंदावन में, जिधर वो भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हमने सुना कैसे तुकाराम जी सदा विठल का नाम लेते रहे, इसलिए उनको देहू में एक वैकुंठ हवाई जहाज एरोप्लेन आकर उनको लेके गया उनको वैकुंठ में। इस तरह हम सबको ये मौका है हमारे पास कृष्ण की ओर प्रेम जागृत करके, जिस तरह हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, अपने पति पत्नी को प्रेम करते हैं और हमारे माँ बाप को प्रेम करते हैं, कोई कुत्ते का प्रेम करते हैं, इस तरह हम प्रेम को किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर जरूर हम रखते हैं। इस तरह कृष्ण की ओर भी जो प्रेम है, जो अर्जुन के अंदर इस तरह का प्रेम होता है, इसलिए भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन मैं तुमको भगवद गीता बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। इस तरह देवकी और वसुदेव कृष्ण के भक्ति किया, उन्होंने बहुत श्रद्धापूर्वक किया और नित्य भक्ति किया। तीन चीज बोला गया है, श्रद्धा और नित्य और भक्तिमय भावना के साथ उन्होंने भगवान की पूजा की। इसके कारण कृष्ण देवकी के गर्भ में अवतरित होते हैं, देवकी के पुत्र बनकर कंस के जेलखाने में आज के दिन जब भगवान अवतरित हुए, ऐसे बोला जाता है कि चंद्रमा तो अष्टमी के दिन उतना बड़ा नहीं रहता, छोटा रहता है अष्टमी के दिन, है कि नहीं। लेकिन चंद्रमा इतने खुश हो गया कि हमारे चंद्रवंश में भगवान अवतरित हो रहे हैं, इसलिए वो चंद्रमा पूर्णिमा बन गया उस जन्माष्टमी के दिन। ऐसे और ऐसे आकाश मार्ग से अनेक देवता आकर फूल की वर्षा कर रहे थे और ऐसे नदियों में बहुत से पानी बह रहा था बहुत, और बारिश बहुत अच्छी तरह हो रही थी और समुद्र में नवरत्न पैदा हो रहे थे, ऐसे पहाड़ों में सोना चांदी वैडूर्या ऐसे तरह तरह के रत्न ये सब पैदा हुए और गाय के स्तनों में पूरा दूध भर गया और गाय इधर उधर भाग रही थी बहुत खुशी से। इस तरह कृष्ण के जन्म के समय कितना सुंदर वर्णन है आप पढ़ेंगे भागवत में, पक्षियां कलरव कर रही थी, नदी बहुत मधुर आवाज के साथ बह रही थी और नदियों में तालाबों में कमल और लिली ये फूल खिल रहे थे, खिल उठे थे और जैसे भ्रमर जो है मधु पीकर मदमत होकर वो गूंज रहे थे। इस तरह वर्णन है भागवत में, कृष्ण जब अवतरित हुए सारे दुनिया में दुनिया का वातावरण हरियाली भर गया और तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल खिल उठे, ऐसे बताया गया वर्णन। और ब्राह्मण लोग जो अपने मुंह कभी खोल नहीं पाए, डर के मारे, क्योंकि कंस ने वो सब ब्राह्मण के मुखों को बंद करके रखा था, कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है। लेकिन अभी ब्राह्मण लोगों ने देखा कि भगवान हरि का जन्म हो गया, इसलिए वो हरि का मंत्र का उच्चारण करने लगे। हरि ओम शम नो मित्र शम वरुण शम नो भवत्वर्यमाम शम न इंद्रो बृहस्पति शम नो विष्णुरुक्रम नमस्ते वायो हो, ऐसे ब्राह्मणों का आवाज सुनाई देने लगा सब दिशाओं में। वो निडर बन गए, जैसे अभय चरणारविंद रे हम बोलते हैं ऐसे है। वो भय को त्याग कर वो कृष्ण के स्मरण में बहुत अच्छी तरह गा रहे थे। ऐसे इस तरह कृष्ण का जन्म होता है कंस के जेल खाने में। तो कंस जैसे दुष्ट राजाएं हैं, बहुत हुए हैं इस दुनिया में, वो दुर्योधन हो, कंस हो, हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, इस तरह 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 के रावण हो, तो एक वर्ग है असुर है, दूसरे वर्ग है सुर है। सुर का मतलब है जो भगवान के दिए हुए विधि विधानों को पालन करने वालों को सुर बोलते हैं। तो सुर का मतलब है भगवान के सुर से सुर मिलाते हैं, इसलिए सुर है वो है। और असुर कौन है? भगवान के विरुद्ध जाने वाले हैं। जितना भी असुर के अंदर निपुणता हो, देखिए दुर्योधन बहुत बड़े निपुण था अपने सेना को संभालने में, और उसके पास 11 अक्षौहिणी थे और 100 कौरव थे, लेकिन पांडवों के पक्ष में सिर्फ 5 पांडव थे। फिर भी भगवान, देखिए कृष्ण पांडवों को कितना साथ दिया। भगवान ये समझाते हैं कि मेरे भक्त के हमेशा मैं साथ देता हूं। ऐसा कहा भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे भक्तों के जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, भगवान नहीं बोलते हैं। मेरे भक्तों के जीवन में भी तकलीफ आएगा, लेकिन जब वो तकलीफ के समय मेरा ध्यान करते हैं मैं उनके साथ रहूंगा, ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए अर्जुन ने अपने रथ का क्या बोलते हैं उसको, रेंस लगाव, लगाव ना, हाँ घोड़ों के लगाव को दे दिया भगवान के हाथ में। इसका मतलब क्या है? हे भगवान, आप ही मेरे जीवन को चलाओ, आप मार्गदर्शन दिखाओ, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, कर्षे वचनाम ताबा, ऐसे बताते हैं। मैं कुछ मनमानी चीज नहीं करूंगा, आप जो ना बोलते हो मैं नहीं करूंगा, आप हाँ बोलते हो मैं करूंगा। ऐसे अर्जुन ने अपने जीवन के घोड़ों का लगाव को भगवान के हाथ में दे दिया। दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे हाथ, बोलते हैं ना, हे दीन बंधु दीनानाथ मेरे जीवन का डोरी आपके हाथ में है। जो इस तरह अपने जीवन के डोरी को भगवान के हाथ में सौंपाते हैं और भगवान के दिए हुए विधि विधानों को पालन करते हैं, उनको भगवान रक्षा करते हैं जरूर। इस तरह अर्जुन को भगवान ने रक्षा की। अर्जुन ही नहीं, पंच पांडवों को, जैसे मैंने हाल ही में कथा सुनी महाभारत के, तो भीम खड़ा था भगवान के बाजू में, तो भगवान ने बोला कि हे भीम, एक बहुत बड़ा अस्त्र तुम्हारी ओर आ रहा है, उसका नाम है नारायण अस्त्र, और इस नारायण अस्त्र को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, ये बहुत कठिन है, उसके लिए एक ही उपाय है, जब नारायण अस्त्र निकट आएगा तुम दंडवत प्रणाम करो, नीचे झुक कर वो नारायण अस्त्र आपको छोड़कर वापिस चला जाएगा, लौट जाएगा। जो सिर झुकता है उनको ही छोड़ता है नारायण अस्त्र, ऐसे भगवान ने बोला। लेकिन भीम ने बोला, हे भगवान आपको मालूम नहीं हमारा फार्मूला, मैं तो किसी को झुकता नहीं हूं, हमारा सर किसी को भी झुकता नहीं है, झुकना हमारा आदत नहीं है, ऐसे बोला भीम ने। भगवान ने बोला, नहीं नहीं तुम दूसरों को झुकते नहीं कि, लेकिन ये नारायण अस्त्र इसको झुकना ही पड़ेगा तुम्हें। लेकिन भीम सुना नहीं, बहुत निकट आ गया अस्त्र, भगवान ने अपने हाथ से जोर से उसके पीछे ऐसे फट करके मारा, तो भीम ऐसे गिर गया नीचे, ऐसे गिर गया नीचे अपने हाथ ऐसे, तो नारायण अस्त्र आया और देखा कि ये तो झुक रहा है तो मुड़कर चला गया वो। तो उसके बाद भीम कुछ देर के बाद ऊपर उठ गया, वो खड़ा हो गया, बोला कि हे कृष्ण तुमने क्यों मारा मुझे ऐसे? तो भगवान ने बोला, तुमको मारे बिना तुम सुनते नहीं, तो मारना पड़ा मुझे। ऐसे देखिए भगवान किस किस तरीके से पांडवों को बचाया उन्होंने, ये पंच पांडवों को विजय प्राप्त कराया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर ध्रुवानी तीर्म तीर्मम। संजय को पूछा संजय को पूछा हमारे धृतराष्ट्र ने, हे संजय तुमने पूरा महाभारत युद्ध को देखा है तुमने, और भगवद गीता जो भगवान बोल रहे थे तुमने सुना, तुम्हारा निष्कर्ष क्या है बताओ मुझे, ऐसे धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने बोला कि मेरा निष्कर्ष यह है, क्या है? जिधर भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है और जो सब तरह के सिद्धियों का मालिक है वो योगेश्वर है, और जिधर अर्जुन है जो भगवान के महान भक्त हैं और बहुत बड़े धनुर्धारी हैं, जो गांडीव धनुष को धारण करने वाला अर्जुन है जो भगवान के महान भक्त है, ये दो लोग जिधर हैं उधर चार चीज होता है। क्या है? देयर विल बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, विक्ट्री, ऑपुलेंस एंड मोरालिटी। उधर महान शक्ति रहेगा, उधर नीति रहेगा, विभूतियां रहेंगी और विजय रहेगा, ये चार चीज। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानी तिरम तिरमा, और उनके वचन सदवचन बन गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कौरव सैन्य सागरम ऐसे बड़े सागर जैसे योद्धा आए थे। ऐसे बताया जाता है कि एक भीष्म पितामह 25,000 अर्जुन के बराबर हैं, ऐसे प्रभा जी बताते हैं। इतने महान बड़े बड़े योद्धाओं को भी पराजित करके अर्जुन को विजय प्राप्त हुआ, पांडवों को विजय प्राप्त हुआ, ये कृष्ण के कारण ही ऐसे विजय उनको प्राप्त हुआ, ऐसे कुंती बताती है बाद में। तो इस तरह कृष्ण के पद कमलों का जो आश्रय लेते हैं उन लोगों के लिए इहलोक में भी परलोक में भी दोनों पदवी प्राप्त होता है और वो सुखी जीवन ऊंचे विचार के साथ वो जी सकते हैं। जैसे शुरुआत में हमने गीत गाए कि ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, हर जन्म में आपको माता पिता मिलते हैं, बेबी बच्चे मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, जमीन मिलता है, पुनर्मित्रम पुनर्वित्तम पुनर्बार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। लेकिन मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, अभी हमें मिला है मानव शरीर और मानव जिह्वा भी मिला है जिससे हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हम नाम जप करके चित्त को शुद्ध करके भगवान की भक्ति को जागृत करके भगवान के नित्य निरंतर शाश्वत कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हम भगवत नाम लौट सकते हैं इसी जन्म में। तो आज के दिन बहुत शुभ अवसर है, भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं 12 बजे कंस के जेल में, और भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं, परम दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, जैसे आपने पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की, उत्तरा के पुत्र परीक्षित की रक्षा की, इस तरह हमारी भक्ति की आप रक्षा करिए। और हम हमारे मन हमेशा भटक रहा है चारों दिशाओं में इस दुनिया में, लेकिन ऐसे मेरे मन अंतर्मुख हो और एकाग्र चित्त के साथ में आपकी भक्ति में जुड़ जाऊं और आपके भक्ति आपके कृष्ण रति कृष्ण प्रेम इसमें मेरे रुचि लग जाए, ताकि मैं विषय वासनाओं के तरंगों से ऊपर उठकर मैं भगवत धाम के जो भाव तरंग जो है उसमें मैं गोता लगाऊं। जैसे डॉल्फिन जो होता है ना वो गोता लगाता है, बहुत आनंद आता है डॉल्फिन को, इस तरह हम भी भक्ति रसम अमृत सिंधु में गोता लगाना चाहिए हमेशा, कीर्तन में, भजन में, भगवान की पूजा में और भगवत गीता भागवत पठन में हमें रुचि लेना चाहिए। अगर हम इस तरह के संस्कारों को हासिल करेंगे अपने जीवन में, हम भी खुशी रहेंगे और दूसरों को भी हम कुछ प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।